विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे अरब देशों की दुर्दशा तथा अमेरिका की ओर से उनके बार बार अपमान की, और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने इस अपमान का जो मुख्य कारण बताया है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अरब देशों का अपमान कर रहे हैं। ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे और चुनावी कैंपेन चला रहे थे, तब भी वो अरब देशों की बार बार बेइज्जती कर देते थे। ट्रंप के इसी रुख को देखते हुए सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर धन खर्च किया और उन्हें पहली विदेश यात्रा के लिए रियाज का चयन करने पर राजी किया। सऊदी अरब समझ रहा था कि इस तरह वो सऊदी अरब के बारे में ट्रंप का नज़रिया बदल सकता है। इसके बाद भी सऊदी अरब ने अलग अलग अवसरों पर सैकड़ों अरब डॉलर के सौदे अमरीका से किए, मगर इतना सब करने के बावजूद ट्रंप ने एक बार फिर अरब देशों की जमकर बेइज्जती की। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व के इलाके में कुछ देश हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है और ये धन उनके पास अमेरिका की वजह से है। यदि अमेरिका न हो तो ये सरकारें एक हफ्ता भी नहीं चल पाएंगी।
कंट्रीज दैट आर इन द एरिया सम ऑफ व्हिच आर इमेंसली वेल्थी वुड नॉट बी देयर एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू अ लेसर एक्सटेंट फ्रांस, बट दे वुड बी देयर एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, दे वुडंट लास्ट अ वीक। We are protecting them. They have to now step up and pay for what's happening.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में हमारे $7 trillion खर्च हो गए और हमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने इसके साथ ही धमकीपूर्ण स्वर में कहा कि धनवान अरब देशों को और पैसा खर्च करना पड़ेगा और सीरिया में सैनिक भी भेजना पड़ेंगे।
Yet we have spent $7 trillion in the Middle East and we've gotten nothing for it. Nothing. Less than nothing, as far as I'm concerned. That's over an 18-year period. The countries that are there, that you all know very well, are immensely wealthy. They're going to have to pay for this. And I think the President and I agree very much on that. And they will pay for it. They will pay for it.
Trump ka ye bayan Arab deshon ka khula hua apman hai. Trump ke nishane par Fars khadi ke Arab desh, Saudi Arab, Qatar aur Emirat विशेष रूप से है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया तो बड़ी अजीब स्थिति देखने में आई। इसके बजाय कि ये देश ट्रंप के इस रवैये पर कोई प्रतिक्रिया देते और उन्हें इस प्रकार का स्वर अपनाने के बारे में चेतावनी देते, उन्होंने आपस में एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने आनन फानन में ट्वीट किया कि ट्रंप का इशारा कतर की ओर था। कतर अपनी सेना सीरिया भेजे, कतर खर्च उठाए और अगर कतर को अमेरिका की मदद न मिले तो एक हफ्ते में इस देश की सरकार गिर जाएगी। कतर के विदेश मंत्री ने भी इसका जवाब दिया, जबकि कतर के अल जजीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्टों में ये साबित किया कि ट्रंप का निशाना सऊदी अरब था। लेकिन अगर अरब टीकाकारों की बात की जाए तो उन्हें इस बात पर गहरा दुख है कि ट्रंप ने अरब देशों के बारे में इतना अपमानजनक स्वर अपनाया है, और इससे भी अधिक खेद इस बात पर कि अरब देश ट्रंप को जवाब देने के बजाय आपस में भिड़ गए हैं। अरब जगत के प्रख्यात टीकाकार अब्दुल बारी अतवान का कहना था कि अमेरिका अरब देशों के पैसे भी लूट रहा है और अब उनके सैनिकों को मरवाने की कोशिश में है, जबकि अरब देशों का हाल यह है कि वो आपस में भिड़े हुए हैं।
هذا الرجل يعني لا يجد من يقول له لا من يقول له كفى يعني يلعن ابوها هيك حمايه اللي بدها تخلي الواحد يدفع ماله ويدفع دماء ابنائه।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने अपने हालिया भाषण में ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि इस्लामी गणतंत्र पवित्र कुरान पर अमल की वजह से अमेरिका के सामने डटा हुआ है। इस्लामी क्रांति की वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अलुस्बान सैयद अली खामेनेई ने बल देकर कहा कि इस्लामी गणतंत्र पिछले 40 साल से साम्राज्यवाद की दादागिरी के सामने डटा हुआ है और उन दुश्मनों की आंखों के सामने जो इस व्यवस्था को मिटाना चाहते थे उसकी क्षमता व शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आयतुल्लाह अलुस्बान सैयद अली खामेनेई ने कहा कि इस्लामी देश पवित्र कुरान से दूर होने की वजह से अपमान झेल रहे हैं और अमरीकी राष्ट्रपति का बड़ी निर्लज्जता से ये कहना कि अगर हम न हों तो कुछ अरब देश एक हफ्ता भी बाकी नहीं रह पाएंगे इसी बीमारी का नतीजा है।
बीमारी दरी अगर मुंदगी है इस्लामी रो बेबिनी तसल्लुत कुफार بر بسیاری از کشورهای اسلامی رو ملاحظه کنید اینی که رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت میایست اونجا میگه اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانن خودشون رو حفظ کنن این تدلیل مسلمان هاست इन बखातर इन इसके इन बीमारी
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि पवित्र कुरान हमसे कहता है कि मोमिनों के बीच आपस में एकता और मेलजोल हो नास्तिकता के मोर्चे से किसी तरह का संबंध और संपर्क न रखा जाए लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है कि कुछ इस्लामी देश ज़ायनी शासन के साथ संबंध बनाए हुए हैं और पवित्र कुरान के आदेश पर अमल न करने का नतीजा क्षेत्र में जंग और मौजूदा अपराध है।
मोमिन बो मोमिन बायस्ती पेवंद वलायती داشته باشه مال هر جای دنیای اسلام که هست باشه این وحدتی که ما میگیم اینه در مقابلش بایستی در جبهه مقابل کفار رو که ملاحظه میکنه با اونها پیوند نداشته باشه با اونها ولایت نداشته باشه ولایت کفار मुसलमान हारो बदबخت میکنه।
पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार आसिम रजा का कहना है कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने ये बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा बताया है और कुरान इस्लाम धर्म में इसी प्रकार सामाजिक जीवन में विशेष स्थान रखता है और विशेष कार्यशैली और रोड मैप पेश करता है।
जो रहबर इनकलाब ने जिस तरह ये बात की है और जो एक एक बल्कि इशारा बहुत बड़ा दिया है कि हमने अपनी जो शख्सियत और शनाख्त है उसको भूल गए। कुरान हमारी शनाख्त है, कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है और कुरान के अंदर वाज़ह अहकामात मौजूद हैं अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान में ये बजाय इरशाद फरमाया गया है और ये कहा गया है, बल्कि इसको अगर वजाहत से हम देखें और उसको पढ़ें कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। तो तफरका डालने वाला कौन है और इस वक्त तफरका मुसलमानों के दरमियान किसने डाला? हम उम्मा की बात करते हैं, रहबर इनकलाब ने जिस तरह बात की है तो ये तफरका डालने वाला अमेरिका और ये साम्राज्य ताकतें ही हैं। आप ये देखें इस वक्त जो 56 से ज़ायद इस्लामी ममालिक सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार वही हैं। आज अगर कहीं मुसलमानों के अलावा किसी जगह पे किसी के साथ ज़्यादती होती है तो रोहिंग्या में कितने अरसे से ज़्यादती हो रही है और कुछ नहीं किया गया, और जो कहीं क्रिश्चियंस के साथ या किसी और कम्युनिटी के साथ की जाती है फौरन यूनाइटेड नेशन अमेरिका और सारे हरकत में आ जाते हैं। तो एक वाज़े मिसाल है और रहबर इस्लामी ने इनकलाब ने जिस तरह ये बात की है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए बहुत बड़ी एक इशारा है, एक मिसाल है। इस्लाम की तालीमात को पढ़ें, सिर्फ पढ़ लेने से अरबी में उसको पढ़ लेने से को समझ नहीं आएगी, उसके इस असल रूह को हम नहीं पहुंच सकते, उसकी तशरीह और उसको समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब हम एक उम्मत की बात करते हैं, तमाम मुसलमानों के यकजा होने की बात करते हैं, जितने फ़िरके या फ़िरका वारियत की जो जंग है उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? आज अगर हम अफगानिस्तान के अंदर या सीरिया के अंदर या इराक के अंदर हम दाइश का फिनोमेना देख रहे हैं तो उसके पीछे हकीकत क्या है? उसके पीछे यहूदी हैं, उसके पीछे वो सारी कुवतें हैं जो कि मुसलमानों को तफरीक करना चाहती हैं, उनके दरमियान लड़ाई करवाना चाहती हैं और उसके बाद एक ऐसी ताकत बना के जिसको वो खुद असलाह दे रहा है, जिसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, जिसको बाद में कहा जाता है कि गलती से ऐसा हो गया, तो ये साबित हो रहा है कि ये मुसलमानों का कत्ले आम करने के लिए साजिश है। इस वक्त सबसे बड़ा असलाह साज कौन है, असलाह बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन है जिसने लड़ा लड़ा के मुसलमानों को आपस में अपना असलाह बेचा? यमन में बमबारी करने वाला कौन, और वहां पे बमबारी करवाने वाला कौन, इसकी भी मिसाल आपके सामने, असलाह किसका बिक रहा है, सीरिया में जंग क्यों चल रही है, वहां पे असलाह किसका बिक रहा है, और जितने मुसलमान इस वक्त कत्लेआम उनका हो रहा है और मुस्लिम कुव्वतें आपस में जो लड़ रही हैं उसमें नुकसान मुसलमानों का है, लेकिन फायदा किसको पहुंच रहा है ये समझने की बात है। और बहुत खूबसूरत, मैं बल्कि ये कहूंगा कि वक्त की बहुत अहम जरूरत है जो पैगाम दिया गया और इस्लामी तालीमात के हवाले से जो बात की गई। खित्ते के अगर सूरत हाल को हम देखें तो जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके अलावा इराक के अंदर जो कुछ खेल खेला गया, उससे पहले सीरिया जो कि इस वक्त कई सालों से वहां के लोग इस चीज की सजा भुगत रहे, किस चीज की सजा है जी, ये मुसलमान होने की, और उसके अंदर कौन किससे क्यों लड़ रहा है किसी को मालूम नहीं, खून किसका बहा रहा है, खून किसका बहाया जा रहा है और किसका बह रहा है ये भी देखें, मुसलमान मुसलमान से क्यों लड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें गौर से देखना है, और इस्लामी तालीमात कुरान हकीम की जब हम बात करते हैं तो कुरानी तालीमात इसीलिए हमें वाज़ह इशारा देती हैं और वजाहत के साथ ज़िंदगी का हर पहलू जो है उसके ऊपर रोशनी डाली गई है।
अरब देशों की सरकारों की आज हालत देखी जाए तो वो कुरानी शिक्षाओं का साफ साफ विरोध करते दिखाई देते हैं। फिलिस्तीनियों पर लगातार अत्याचार करने वाले इसराइल से संबंध बढ़ाने का मामला हो या दूसरी ओर यमन और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों पर हमले का मामला हो, अरब सरकारें आगे आगे दिखाई दे रही हैं। सीरिया के मुद्दे में, यमन के मुद्दे में, इसी तरह लीबिया के मुद्दे में और अन्य इस्लामी व अरब देशों के मुद्दे में अनेक टीकाकारों का यह मानना है कि इस्लामी देशों के साथ सऊदी अरब और कतर जैसे देश वही बर्ताव और वही रवैया अपना रहे हैं जो अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों के संबंध में अपना रखा है। इन देशों को अपने रवैये पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश जहां अन्य इस्लामी और अरब देशों के बीच अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं और ख़ुद को इस्लामी जगत का अगुवा और नेता जाहिर और स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं खुलेआम अमेरिका के हाथों अपमान झेल रहे हैं और इस अपमान पर आवाज़ उठाने की भी उनमें हिम्मत नहीं रह गई है।